परमेश्वर की महती अनुकंपा से हम लोग प्रातःकाल विद्यारण्य स्वामी जी के द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ उसके सातवां प्रकरण तृप्ति दीप प्रकरण उसके ऊपर विचार चल रहा था। प्रमाणगत संशय, प्रमेयगत संशय और विपरीत भावना। प्रमाणगत जो संशय है उसको निवृत्ति करने के लिए श्रवण करना पड़ेगा और प्रमेयगत संशय निवृत्ति करने के लिए मनन, विपरीत भावना को दूर करने के लिए निधि ध्यासन करना पड़ेगा। उसी को यहां एकाग्रता शब्द से दिए हैं। यहां एकाग्रता लिखे हैं वही निधि ध्यासन है। तो प्राय क्या होता है, जैसे हम लोगों की वृत्ति है, मन है, सांसारिक चीजों में ज्यादा उलझा हुआ रहता है। एकाकार वृत्ति बनाने के लिए यहां सगुण उपासना जो है बतलाई गई। किसी न किसी आलंबन का नित्य निरंतर चिंतन करने से एकाकार वृत्ति बनती है कि आप जब भी सवेरे सो करके जगते हैं अथवा किसी को मिलते हैं, किसी के साथ वार्तालाप करते हैं, तो हम लोगों की जो वृत्ति है ना परिवर्तित होती रहती है। अनेक प्रकार के परिवर्तन जो है वहां होता रहता है। तो इसलिए यहां कहते हैं ननु एतत् कुतो अवगतम इति आशंक्य, पांचवां श्लोक के आगे अवतरणिका में शंका करते हैं ननु करके, एतत् कुतो अवगतम इति आशंक्य, किससे ज्ञात होगा कि उपासना से एकाग्रता होती है अथवा उपासना कहां बतलाई गई है, किस जगह पे उपासना बतलाई गई है। उसके समाधान में कहते हैं उपासना विचारस्य वेदांत शास्त्रे कृतत्वात्। उपासना का विचार जो है वेदांत शास्त्र में विस्तार रूप से किया गया है। किसी भी उपनिषद को आप लेंगे, उपनिषद के शुरुआत में उपासना ही बतलाई जाती है, चाहे दहर उपासना, सांडिल्य उपासना, प्रतीक उपासना, अनेक प्रकार की उपासना जो है वहां बतलाई गई है। उपासना से क्या होती है कि एकाकार वृत्ति बनती है, एक प्रकार की वृत्ति आपकी बनेगी। जैसे यहां उसे पहले कहे सगुण ब्रह्म उपासना वद, चौथे श्लोक का विचार उस दिन जो जहां हम लोग छोड़े थे, सगुण उपासना वद गुण विशिष्ट परमेश्वर का चिंतन करना। तो उनका चिंतन करते करते मन तदाकार बन जाता है, उसके आकार के जैसा बन जाएगा। कहते हैं एक भक्त थे, उनका नाम था विट्ठल नाथ। तो वो भगवान कृष्ण को पुत्र मानते थे, भगवान कृष्ण को पुत्र मानते थे और उनका चिंतन करते थे। वो किसी से अधिक वार्तालाप नहीं करते थे। उनका घर जो है बहुत बड़ा घर था, सात लड़के थे उनके, और सातों लड़कों की शादी हो चुकी थी, सात बहुएं घर में आ गई थी, बहुत बड़ा घर था। तो एक दिन एक चूड़ी बेचने वाली आई, तो इन्होंने कहा कि भाई घर में जाओ, हमारे बहुओं को यदि जरूरत है तो पहनवा देना। तो गई और उसमें सबको चूड़ी पहनाई, आकर के बोली कि ऐसा है 8 रुपया हुआ। कितने 8 रुपये, सारी बहुएं जो हैं एक एक रुपया की चूड़ी पहनी। वो सोचेगी साथी ही बहू थी तो 8 कहां से हुई, बहुएं तो साथी हैं मेरी। लेकिन कहेंगी क्या इसके साथ बकवास करना, चलो 8 रुपया दे दो इसको। लेकिन आज तक गांव में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला कि मेरे को झूठ कहे, लेकिन ये तो चूड़ी वाली मेरे को झूठ बोल करके 1 रुपया लेकर के चली गई, ऐसा मन में विचार हुआ। लेकिन वो सोचे क्या करना है इसको, ज्यादा अपना चिंतन करना चाहिए, तो पुनः भगवान के चिंतन करने लगे। लेकिन बीच बीच में वो वृत्ति आ जाती थी कि 1 रुपया जो है झूठ बोल करके ले गई। तो रात्रि में सोए थे और स्वप्न हुआ उनको, तो स्वप्न में किशोरी जी आई। वो आकर के बोली कि देखो ऐसा है, आप कृष्ण को पुत्र मानते हैं तो मैं आपकी बहू हो गई कि नहीं, तो मैं भी चूड़ी पहनने के लिए गई थी वहां, मैं भी वहां चूड़ी पहनने के लिए गई थी। तब इनको जब जग गए तो पता लगा कि अरे जिसको मैं चिंतन करता हूं, इतने मन गहराई से चिंतन करते थे, अभिन्नता हो गई थी भगवान के साथ कि पुत्र मानते थे तो किशोरी जी बहू बन करके आ गई। तो उनका जो चिंतन है ना, बीच में ब्रेक हो रहा था कि झूठ क्यों बोली। स्वप्न के बाद वो चिंतन इतने और बढ़ गया कि नित्य निरंतर उठते बैठते खाते पीते हंसते जगते खेलते फिरते यही चिंतन उनका चंदन का। तो सगुण उपासना से मन जो है एकाकार बन जाता, एक प्रकार की वृत्ति बनती है। तो उस चीज को यहां बतलाते हैं कि उपासना कहां कही गई है। ननु एतत् कुतो अवगतम इति आशंक्य, मुझे समाधान में कहते हैं उपासना विचारस्य वेदांत शास्त्रे कृतत्वात्। उपासना के जो विचार है वेदांत शास्त्र में विस्तार रूप से कहा गया है। हर उपनिषद को आप उठाएंगे तो वहां ऐसा कथन है, अलग अलग उपनिषदों में अलग अलग उसमें उपासनाएं बतलाई गई हैं। उसके श्लोक देखिए, उपास्तयोतयेवात्र ब्रह्मशास्त्रे चिंतिता प्रागनभ्यासिनः पश्चात् ब्रह्माभ्यासेन तद्भवे। एक बार बोलिए, अतएव अत्र ब्रह्मशास्त्रे अपि उपास्तयो चिन्तितः प्राग अनभ्यसिनः पश्चात् ब्रह्माभ्यासेन तद्भवेत्। इसीलिए अतएव अत्र इस प्रकरण में ब्रह्मशास्त्रे अपि, ब्रह्मशास्त्र का अभिप्राय वेदांत शास्त्र में, जहां वेद की शिरोभाग है वेदांत है, इसी में उपास्तयो उपासनाएं चिंतिता बतलाई गई है, विचार किया गया है उसमें क्या उपासना करने से क्या होगा। तो उपासना करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। उसमें उपनिषद में ये बात आई है कि जो भी व्यक्ति कर्म के साथ भी यदि उपासना करता है तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, केवल उपासना भी करता है तभी भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन निष्काम भाव से यदि उपासना कोई व्यक्ति करता है तो उसका अंतःकरण शुद्ध होकर के ब्रह्म जिज्ञासा हो जाएगी निष्काम भाव से। जैसे व्यक्ति मंदिर में जाता है तो भगवान को मांगता रहता है, सबसे बड़ा भिखारी है। तो इसलिए कहते हैं बिना मांगे। अच्छा सोच लीजिए, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सबके अंदर बाहर परिपूर्ण है, आपके अंदर कुछ कमी होगी उनको पता लगेगा कि नहीं लगेगा? किसी व्यक्ति को क्या चाहिए भगवान को पता लगेगा कि नहीं लगेगा? यदि अब भगवान को जब पता लगेगा तो मांगने की क्या जरूरत है, वो तो जब जरूरत है तो दे देंगे वो। और जरूरत से ज्यादा चीज यदि आप मांगते हैं, आवश्यकता से अधिक कोई चीज यदि आप मांगते हैं तो आपके प्रारब्ध में नहीं होगा तो नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए यहां कहते हैं उपासना का विचार जो है उपनिषद आदि में विस्तार रूप से उसमें की गई है। लेकिन प्राग अनभ्यसिनः, पहले जो उपासना के अभ्यास नहीं किए हैं, कुछ लोग तो कहते हैं जैसे कर्म किया फिर उपासनाएं की फिर क्रम से वेदांत का श्रवण किया, अब कोई व्यक्ति उपासना नहीं की, वैराग्य हो गया सीधा चला गया कैलाश आश्रम ऋषि के, और वहां पहले से तो उपासना की नहीं थी। तो यहां इसका समाधान देते हैं प्राग अनभ्यसिनः, पहले उपासना की अभ्यास नहीं की, पश्चात ब्रह्माभ्यासे न तद भवेत, जब इसका अभ्यास करेंगे, आगे के श्लोक में उसमें बतला रहे हैं क्या अभ्यास करना है, इसका अभ्यास करेंगे तो वही फल आपको मिल जाएगा। दिने दिने तो वेदांत चिंतनात भक्ति संयुतात, रोज रोज जो वेदांत का चिंतन करते हैं ना, गुरु शुश्रूषया लब्धात कुछ शासित फलम लभेत। शंकराचार्य भगवान कहते हैं फल तो उसको मिल जाएगा जो रोज वेदांत का अभ्यास करते हैं ना, असी कृच्छ तप के फल उसको मिलता है। तो कहने का मतलब इतने फल उसको मिलता है, रोज मिलता है, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा ऐसा नहीं, रोज उसको मिलता है। तो इसलिए यहां बतलाए हैं और दो चीज इसमें बताने जा रहे हैं, एक तो कृतोपास्ति, कृता उपास्तिर ये न, जिसने उपासना की तो उसका अंतःकरण तो शुद्ध हो जाएगा, लेकिन जो उपासना नहीं की ऐसा अकृतोपास्ति। तो कृतोपास्ति से दो चीजों को लिए हैं, एक तो जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याह धारण ध्यान करके सभी कल्प निर्विकल्प समाधि तक चला जाता है वो व्यक्ति, अथवा जो उपासना करके इष्ट देवता का दर्शन किया है, इष्ट देवता का दर्शन, जैसे परमहंस जी थे, रामकृष्ण परमहंस, काली का साक्षात्कार किए थे, तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति को महावाक्य जैसे आप श्रवण कराएंगे तो ज्ञान हो जाएगा, महावाक्य सुनते ही तत्त्वमसी कहते ही मैं ब्रह्म हूं उसका बोध हो जाएगा। उसको तो कृतोपास्ति कहते हैं जो निर्विकल्प समाधि तक चला गया है, अथवा जो भक्ति मार्ग से उपासना मार्ग से उसके जो भी इष्ट है उसका साक्षात्कार जो कर चुका है। लेकिन यहां टीका में देखिए उपास्तय इति अकृतोपास्तिकस्य कुतस् तज्जन्म इत्यतः प्राग, कहते हैं जो अकृतोपास्ति है, कोई उपासना उपासना नहीं की, ऐसा जो व्यक्ति है उसका क्या होगा, तो कहते हैं प्राग अनभ्यसिनः पश्चात ब्रह्माभ्यासेन तद भवेत, पहला अभ्यास नहीं किया था बाद में वेदांत चिंतन से ही उसका हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं, बहुत सारे महात्मा लोग भी भटक जाते हैं, अरे बहुत वेदांत सुन लिए अभी थोड़ा भक्ति करने वृंदावन चलते हैं, भक्ति करने के लिए कहां जाना पड़ेगा, वृंदावन चले अथवा नहीं तो अयोध्या चले, क्योंकि चिंतन करते समय यदि ठीक ठीक आप चिंतन नहीं करेंगे मन दुर्बल हो जाएगा, मन जब दुर्बल हो जाता है तो उसको अनेक प्रकार की आशाएं दिखाई पड़ेगी, मेरा क्या होगा। अब जो सर्वव्यापक तत्व का चिंतन कर रहा है उसको कहते हैं मेरे सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं, दूसरी चीज होगी तभी तो मिलेगी, अब दूसरा तो कुछ है ही नहीं, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। तो ऐसा जो व्यक्ति है उपासना नहीं की तो क्या चिंतन करना चाहिए, आगे के श्लोक में उसको बताया जाए। तत् ब्रह्माभ्यासश्च कीदृश इति आशंकायाम आह, ब्रह्माभ्यास किस प्रकार है, ऐसी आशंका होने से उसके उत्तर में कहते हैं तच्चिंतनम तत्कथना मन्योन्यम तद प्रबोधनम एतदेक परत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधाः। कहते हैं तत् चिंतनम, तत् का अभिप्राय ब्रह्म परमात्मा जो है, तत् चिंतनम। अच्छा, आपके पास कोई आ गया सोच लीजिए, तो वहां भी तत् कथनम, जिसका आप चिंतन कर रहे थे उसका कथन। जैसे अभी कहीं भी आप जाएंगे ना, जीएसटी के कथन चल रहा है सर्वत्र, कहीं भी आप जाएंगे तो अपने आप एक तारीख से लागू हो गया, तो क्या होगा, कैसे होगा, क्या किया जाएगा, सब चिंतन करते हैं। आज एक बहुत अच्छी चीज आई थी, जीएसटी का क्या अर्थ है, जीव का अर्थ है गोपाल, एस का अर्थ है सहारा, टी का तेरा, गोपाल सहारा तेरा, जीएसटी का मतलब। तो इसलिए तत्कथनम, परमात्मा के ही कथन करना चाहिए। अन्योन्यम तद प्रबोधनम, जैसे आपके कोई सहपाठी है, साथी है, परस्पर में भी उसका ही कथोपकथन करना चाहिए। एतदेक परत्वम च, एक परता, इसमें क्या है, कहना भी, वार्तालाप भी परस्पर करना, मानसिक रूप से चिंतन करना, इसी से एक परता हो जाएगी। बुधाः ब्रह्मभ्यासं विदु, उसी को ही बुद्धिमान लोग, जो विज्ञ व्यक्ति है, ब्रह्मभ्यास कहते हैं। ब्रह्म का अभ्यास कैसे करना है, तो कहते हैं ऋषिकेश में अपने एक छोटे महाराज जी थे, हरिहर तीर्थ जी महाराज, बहुत अंतर्मुख रहते थे। और अभी जो मंडलेश्वर जी महाराज है ना, वो प्राय बताते हैं, वो चतुर्थी पंचमी भूमिका में प्राय रहते थे। तो कमरे में बैठे होंगे तो उस समय की बहुत बड़ी विभूति मानी जाती थी, उत्तराखंड के लोग दर्शन करने के लिए आते थे। अब लोग दर्शन करने के लिए जब आएंगे ना, तो अपने सुनाने के लिए आते हैं, महात्मा से कुछ सुने उससे अलग है कि अपने कुछ सुनाए कि महाराज हमारी फैक्ट्री ठीक नहीं चल रही है, हम लोगों के पति पत्नी में बातचीत ठीक से नहीं बनती है, लड़का बात नहीं मानता है, फैक्ट्री जो है बहुत डाउन चल रही है इस बार। तो ऐसे सांसारिक विषयों को लेकर के ही लोग पहुंचते हैं वहां। लेकिन महाराज जी इतने स्ट्रिक्ट है ऐसी चीजों के प्रति, जैसे कोई व्यक्ति आकर के बैठ करके संसार की बात यदि शुरू की, उनके साथ दो चार सेवक रहते थे, वो तुरंत कोई गीता के श्लोक, व्याकरण के सूत्र, अथवा कुछ ना कुछ ऐसे आधा बोलेंगे, और बोलने के बाद अरे सूत्र याद नहीं आ रहा, क्या है इसके आगे, तो वो जैसे बोलेंगे ना, हाँ हाँ अभी याद आ गया, क्या अर्थ है इसका, वो जो बातचीत चल रही थी ना उसको तुरंत काट देंगे। ओ बेचारा, अरे शास्त्र चिंतन शुरू हो गया तो उठ के चल गया, अपना तो काम खत्म हो गया, कोई सुनने वाला है नहीं यहां। तो इसलिए विषयों को तिरस्कार करना, जो विषय सामने है आपके आ रहा है, और विषय फिर यदि अंदर चला गया तो फिर वो आपको विक्षिप्त करेगा, उद्वेलित करेगा, अशांत कर देगा, तो प्रवेश करने से पहले उसको आप निराकरण कर दिए। तो ये तत् चिंतनम, मन में केवल परमात्मा के चिंतन, शास्त्र चिंतन, उसका चलना चाहिए। तत्कथनम, शिष्य भी यदि आपके पास आ गया तो वही शास्त्र की बात ही आप उनको बता दें, अथवा जिस जो आपके अनुभव है ऐसे कुछ अनुभव की बातें उनको बता रहे हैं, ताकि उसके जीवन में प्रोन्नति होगी। और अथवा आपके कोई साथी भी है आपके पास मिलने आ गया तो आप वही चलते, अरे गीता पढ़ रहा था, गीता में जो है ना इसके ऊपर भाष्य में ऐसे लिखा है, टीका में ऐसे लिखा है, इसका बहुत सुंदर अर्थ किया गया है, तो वो हाँ हाँ मैं भी पढ़ा हूं उसके ऊपर ऐसे सुंदर ये लिखा है, तो आप शास्त्र में रमण कर रहे हैं। अन्योन्य तत् प्रबोधनम, उसी का ही चिंतन चल, ऐसी एक परता आपके जीवन में आ जाए तो इसको ब्रह्माभ्यास कहा गया है। और जो व्यर्थ वार्तालाप है इन सब चीजों को निराकरण करने के लिए श्रुति में उसको बतलाए आगे के श्लोक में, इसमें टीका में कुछ नहीं है इसलिए तत्चिंतनम करके छोड़ दिए, स्पष्ट है अर्थ। एतत् एक परत्वम विषयदयी तुम श्रुति माह, उसको और विस्तार करने के लिए एक परता कैसे होगी उसको विस्तार यहां किए। तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्रह्मणः नानुध्यायान बहून शब्दान वाचो विग्लापनम हिता। कहते हैं धीरो तमेव विज्ञाय ब्राह्मण प्रज्ञां कुर्वित बहुन शब्दान न अनुध्याय तथ वाचो विक्लापनम ही। इसमें कहते हैं धीरो तमेव विज्ञाय, तम का अभिप्राय जो परमात्मा है उसको ही जान करके, विज्ञाय तमेव धीरो विज्ञाय ब्राह्मण प्रज्ञां कुर्वित, उसमें प्रज्ञा शब्द का अर्थ यहां टीका में आगे लिखेंगे कि एकाग्रता करना परमात्मा में, परमात्मा में एकाग्रता करना, प्रज्ञां कुर्वित न अनुध्यायाद बहुत शब्दान, जो ईश्वर साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है ऐसे किताबें वार्तालाप इन सब चीजों को निराकरण करना चाहिए, क्योंकि वाचो ही विकला वाणी के वो जो है नष्टता है, वाणी की हानि है उसमें। उस प्रकार यदि बोलना आप किसी को तो उसे एक तो वाणी अशुद्ध हो जाती है, वाणी अशुद्ध हो जाती है। आप सोच लीजिए सवेरे उठ करके भगवान के नाम लेते हैं और नौकर को गाली दे दी, वो वाणी में जिस जुहा में आप भगवान के नाम को बैठाए थे और उसी में फिर गाली शुरू कर दी, तो जिह्वा दूषित हो गई कि नहीं हो गई? अब जिस जिह्वा दूषित हो गया उसके साथ मन भी जुड़ा हुआ है वो भी दूषित हो गया। एक तो वाणी को कभी व्यर्थ नहीं, ये वाणी नष्ट हो जाना, वाणी व्यर्थ हो गई, वाणी की ग्लानी हो गई, सोच लीजिए। तो इस प्रकार यहां देखिए उसमें स्पष्ट हो जाएगा जो टीका में ना, तमेव इति धीरो शब्द का अर्थ कहते हैं ब्रह्मचर्यादि साधन संपन्न। धीर शब्द का अर्थ ब्रह्मचर्यादि साधन, ब्रह्मचर्य आदि शब्द से समदम तितिक्षा उपरति सब चीजों को ले लेना, इससे जो संपन्न है उसके पास सब आंतरिक गुण है, अच्छे अच्छे गुण सब हैं। ब्राह्मणों, ब्राह्मण शब्द का अर्थ कहते हैं ब्रह्म भवितुम इच्छुर मुमुक्षु, ब्राह्मण शब्द का अर्थ है मुमुक्षु, जो ब्रह्म को अभिन्न रूप से अनुभव करना चाहता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा अभेद अनुभव जो करना चाहता है, ऐसे मुमुक्षु। तमेव, तमेव का अर्थ कहते हैं प्रत्यग रूपम परमात्मानम एव। तमेव शब्द का अर्थ है परमात्मा को। विज्ञाय, विज्ञाय शब्द का अर्थ किए संशयादि अभावो यथा भवति तथा ज्ञात्वा। जैसे अनेक प्रकार के संशय होता है, अब जैसे प्रमाणगत संशय है, प्रमेयगत संशय है, तो अलग अलग संशय होता है। कुछ लोग हैं कहेंगे अरे शिवजी सबसे बड़े हैं, किसने कहा है शिवजी कहा है कि बड़े हैं, हमारे गोपाल जी सबसे बड़े हैं। कोई कहेगा नहीं नहीं राम जी बड़े हैं, कोई देवी माता बड़े हैं। तो ऐसे चीजों में बहुत लोग उलझे हुए रहते हैं। अब शास्त्र पढ़ेंगे तो माया विशिष्ट ब्रह्म से सबके सृजन होता है, उसको चाहे आप शिव कहो, चाहे राम कहो, चाहे कुछ भी कहो, नाम आप कुछ भी दे दीजिए उसमें, लेकिन माया विशिष्ट ब्रह्म से संसार की उत्पत्ति होती है। तो इसी प्रकार प्रमाणगत जो संशय है वो षड्विध लिंग के तात्पर्य जब आप निश्चय करेंगे उससे संशय दूर हो जाएगा। प्रमेयगत भी जो संशय है, जीव ब्रह्म कैसे, संसार अनित्य कैसे होगा, हम यार इतने बड़े हिमालय पर्वत है, विशाल जलराशि समुद्र है, इतने बड़े संसार है, आप कहते हैं कि संसार है ही नहीं। तो जब आप तर्क के माध्यम से विचार करते हैं प्रपंचो मिथ्या दृश्यत्वात् स्वप्न दृश्यवत्, प्रपंच मिथ्या है दृश्य होने से, जैसे स्वप्न दृश्य है वो भी दृश्य होने से मिथ्या है, और विचार करेंगे तब पता लगा ये भी दृश्य है और ये भी मिथ्या है। मिथ्या का अभिप्राय हम लोग क्या समझते हैं, अब जैसे सामान्य व्यक्ति की विचारधारा है कि माता पिता पति पत्नी भाई बहन हम लोग जितने हैं ना, कोई मरना नीचे जैसे हैं ऐसे सब बने रहेंगे, कोई जो है मरना नीचे सब सत्य मान करके, लेकिन रोज देखते हैं कि रोज कोई ना कोई चला जाता है, कोई ना कोई चला, लेकिन विवेक नहीं हो पाता है कि ये शरीर भी चला जाएगा, जो भी दृश्य है वो सब नष्ट होने वाले हैं। लेकिन इन नष्ट को जो देखता है जानता है वो अविनाशी तत्व है, उसकी तरफ उसकी दृष्टि नहीं है, जो अविनाशी तत्व है उसको अनुभव करने के लिए कोशिश नहीं की। तो इसलिए यहां कहते हैं प्रमाणगत संशय हो चाहे प्रमेयगत संशय हो, दोनों संशयों का अभाव, संशयादि अभावो यथा भवति तथा ज्ञात्वा। संशयों के अभाव जिस प्रकार होगा उस प्रकार जान करके विज्ञान शब्द का अर्थ है। प्रज्ञाम, प्रज्ञाम कुर्वित, प्रज्ञा शब्द का अर्थ कहते हैं ब्रह्मात्मकत्व ज्ञान संतति रूपम एकाग्रम। ब्रह्म और आत्मा अभिन्न है इस प्रकार के प्रवाह, अहम ब्रह्मास्मि जो प्रवाह है वो चलना, मन में अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि बोलना नहीं, ऐसा प्रवाह चलना। एक बार ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद जी महाराज थे, तो एक दिगंबर साधु सारे शरीर में भस्मी लेपन किया हुआ था, हाथ में एक चिप्पी ले रखा था, महात्मा लोग कमंडल चिप्पी रखते हैं ऐसे, और चिप्पी है ना बहुत रेट की है, 8,000-10,000 में चिप्पी आती है, बहुत बार तो मिलती नहीं है, लेकिन वो बहुत पैसे का है वो, तो उसमें चिप्पी हाथ में पकड़ करके वो आ रहे थे, हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि से बोलते हुए। अब शिवानंद स्वामी जी ने बहुत ह्यूमरस है, खूब मजाक करते, तो तो देखे कि उनके पास दो तीन शिष्य थे, एक को कहे महात्मा के हाथ से ना कमंडल खींच करके भाग जाओ। तो गुरुजी की बात है, वो वहां से ऐसे चलते चलते गया, वो तो अपने असावधानी से ऐसे चलते चलते आ रहे थे, हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि करते हैं। उस चिप्पी को ऐसे फटक से हाथ में पकड़ करके अंदर कहीं अंदर में चले गए, तो तुरंत वो महात्मा अहम ब्रह्मास्मि छोड़ करके ना गाली गलौज देना शुरू कर दिया। यही महात्मा सब सिखाता है, महात्मा के वेश में बैठा हुआ ये राक्षस है, ये है वो है, ऐसे कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोलने लगा। तो शिवानंद स्वामी जी कहे अरे अहम ब्रह्मास्मि क्यों कहता है, कमंडलो अस्मि बोलो कमंडलो अस्मि यही बोलो तुम, अब अहम ब्रह्मास्मि तुम्हारी कहां चली गई, कमंडलों में तुम्हारी रुचि है। तो यहां इसमें कहते हैं प्रज्ञान शब्द का अर्थ ब्रह्मात्मक्यत्व ज्ञान संतति रूपम एकाग्रम, ब्रह्म और आत्मा जो है एक है, इस प्रकार की भावना जो है आपके अंदर चले, संतति प्रवाह, यही एकाग्रता है, निधिध्यासन है। एकाग्रता शब्द का अर्थ है निधिध्यासन, अहम ब्रह्मास्मि के प्रवाह चले। कुर्वीत शब्द का अर्थ है संपादित, अनात्म गोचरान बहुन शब्दान न अनुध्यायन न अनुस्मरित, कहते हैं अनात्म गोचरान आत्मा से भिन्न जो भी है संसार, ऐसे बहुन शब्दान ऐसे चीजों को न अनुध्यायन अनुस्मरित, उसका स्मरण नहीं करना चाहिए। संसार का यदि व्यक्ति स्मरण करता है तो बार बार उसको संसार में लेकर के आ जाएगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जो चक्र है संसार पुनः खींच करके उसको लेकर के आ जाएगा। और ब्रह्म चिंतन चलेगा तो आप स्वयं ब्रह्मरूप हो जाएंगे। तो इसलिए यहां निषेध किया जा रहा है कि जहां व्यर्थ बातें कभी कभी जो साधक है उन लोगों को अनुभव में आता है, मन कभी कभी बहुत प्रसन्न रहता है, ठीक से आपके पूजा पाठ चल रहा है, जप चल रहा है, स्वाध्याय चल रहा है, सत्संग चल रहा है, सब टाइमिंग है, तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा दिन गुजर रहा है मेरा। इतने में कोई आपके दोस्त या कोई ऐसे कोई आ गया और आपको मिलना पड़ा और ये सत्संग की बात तो खत्म, इधर उधर की बात हो गई और वो बात लंबे समय तक चली, आपको इच्छा नहीं होने पर भी सुनना पड़ा। अब वो सुनेंगे ना, कुछ लोग हैं उसको तो निराकरण करने में सामर्थ्यवान होते हैं, उसको हटा सकते हैं, कभी कभी सुनना पड़ता है तुरंत हटा भी देते हैं, लेकिन कुछ चीज अंदर चली जाती है, कुछ ऐसी चीज अंदर चली जाएगी वो ब्रह्म ज्ञान को नष्ट कर देगी। ऐसा सोच लीजिए 100 लीटर दूध है और एक बूंद यदि वहां नींबू डाल दिए तो दूध तो खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप लंबे समय से साधन भजन करते रहते हैं और हठात एक दिन कोई ऐसा आपके परिचित अथवा कोई रास्ते में कोई मिल गया इस प्रकार के कुछ कह दिया, वो संसार के चिंतन फिर शुरू हो जाता है। तो इसलिए यहां सावधान करते हैं, अनात्म गोचरान बहुन शब्दान न अनुध्यान अनुस्मरित, इसका मन से संबंध है, न अनुस्मरित बार बार चिंतन नहीं, क्या कहा था, क्यों कहा था, किस लिए कहा था, अब अनुस्मरित न अनुस्मरित उसको उसी समय ही त्याग कर दिया। ध्यान अभिध्यानम अपि उपलक्ष्यते, ध्यान से यहां उपलक्षणा से कथन को भी लेना, अभिधानम कथनम उसका भी उपलक्षण, मन से भी चिंतन नहीं करे और वाणी से भी ना बोले, वाणी से भी नहीं बोलना चाहिए। न अभिदध्याच्य अन्यथा शब्दध्याने न बाग विकलापन अनुपपत्ति है, शब्द देखो दोनों चीजों से ये होता है, एक तो वाणी को व्यर्थ प्रयोग नहीं करना चाहिए और मन से भी व्यर्थ चिंतन नहीं करना चाहिए। वाणी से भी कहेंगे वो भी मन के साथ संबंध होगा तो भी तो आप बोलेंगे, अब मन से ज्यादा गहरा यदि कोई चीज हो जाए तो वाणी में आ जाए, वो भी वाणी में आ जाती है। तो दोनों का परस्पर में संबंध है, इसलिए उपलक्षणा से दोनों को लेना है। मन से भी चिंतन न करे और वाणी से भी व्यर्थ वार्तालाप न करे। हर समय महात्मा लोग कहते हैं अल्प बोलिए, शुद्ध बोलिए, सत्य बोलिए और दूसरे के दिल को प्रसन्न करे ऐसी बात बोलिए। व्यर्थ बात करने से कोई लाभ तो होता नहीं, इसलिए पहले से ही इंद्रियों को ऐसे संयमित कर लेना चाहिए ताकि संसार को आप प्रश्रय नहीं देते अंदर में आने के लिए। संसार बाहर के बाहर रहता है, तभी तो आगे चल करके आपका मन जो है एक परता, एक तानता, एक रूपता, एकाकार वृत्ति उसमें बनेगी, एक प्रकार की वृत्ति बनेगी। तो इसलिए यहां उपलक्षण से दोनों को लिए कुत इत्यतः आह बाचो विकलापनम हितत ही यस्मात तद अभिदानम, इसलिए उसका कथन भी उसमें किया गया है, चिंतन के साथ साथ कथन। अनेन स्मरणम उपलक्ष्यते, वाणी के साथ स्मरण का भी उपलक्षण है। वाच इति मनसो अपि उपलक्षणम, वाणी से मन का भी उपलक्षण और मन से वाणी का भी उपलक्षण, दोनों को इसमें परस्पर लेना चाहिए, ऐसे टीकाकार कहते हैं। विगलापनम, विगलापयति विगलापनम श्रम हेतु, यहां विगलापनम शब्द का अर्थ है श्रम का हेतु, व्यर्थ है। वाणी से जो बोलना है, जो आपके श्रम कर रहे हैं ना, बहुत संसार का वर्णन किए, करने के बाद कुछ मिला नहीं, वर्णन तो बहुत किए। अच्छा, करने के बाद संसार आपको मिल गया तो संसार तो आपके साथ रहेगा कि नहीं रहेगा? हर समय वो भी तो व्यर्थ हो गया कि नहीं हो गया? जैसे संसार मिल भी गया तो संसार भी तो सदा आपको साथ देने वाला है नहीं। तो इसलिए यही विगलापनम शब्द का अर्थ है श्रम हेतु, व्यर्थ श्रम हेतु हो गया ये। इसलिए अयम अभिप्राय प्राय उसका अभिप्राय बताते हैं, इतर शब्द अनुसंधाने मनस श्रमो भवेत। इतर का मतलब सांसारिक शब्दों का यदि आप अनुसंधान करते हैं, मन को श्रम करना पड़ता है उसमें। अनुसंधान तो उसमें मन ही करेगा। श्रमो भवति तद अभिधाने तो वाचा इति, और मन से यदि आप चिंतन करेंगे तो वाणी में भी उसमें श्रम होगा। जो भी चिंतन किए तो बताएंगे किसी को आप कैसे ऐसे चिंतन में किया था। मन में भी जो श्रम है और वाणी में भी जो श्रम है, दोनों व्यर्थ होते हैं यदि संसार का चिंतन होता है। इसलिए संसार का चिंतन नहीं करना चाहिए। आगे इसमें कहते हैं एवं एकाग्र प्रतिपादिकम श्रुतिम अभिधाय स्मृतिम अपि आह। बृहदारण्यक श्रुति कथन किए कि दूसरा कुछ चिंतन नहीं करना चाहिए, चिंतन तो केवल परमात्मा का करें। आगे ऐसे में कहते हैं श्रुति को कथन करके अभी स्मृतिम अपि आह गीता का कथन करने जा रहे हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये जनाः माम अनन्यः चिंतयन्तो पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं अहं वहामि। भगवान यहां स्पष्ट कहते हैं, जो भी व्यक्ति ये जना माम अनन्यास चिंतयंतु, मैं उस साधक से भिन्न नहीं हूं अथवा वो साधक मेरे से भिन्न नहीं है, ऐसा जो अभिन्न चिंतन करता है, अभेद चिंतन करता है, पर्युपासते, पर्युपासते का यहां टीका में किए हैं सब काल से, तस्मात सर्वेषु कालेषु मामन स्मर युद्ध च, गीता में जैसे भगवान कहे वही इसमें भी लिए हैं, सब कालों में मेरा चिंतन करना चाहिए। ऐसे तेसाम, उस प्रकार के जो साधक हैं, नित्य अभियुक्ताना, मेरे से नित्य जो है अभिद रूप से जुड़े हुए हैं, उनका योगक्षेमम अहम बहामी। योग शब्द का अर्थ है अप्राप्तस्य प्राप्ति योगः, अतस्य रक्षणम क्षेमः। तो यहां देखो सबसे बड़ी चीज है, एक महात्मा इसके ऊपर कहते थे, योग क्षेम का अर्थ ये बाह्य चीज नहीं है कि आपको आश्रम मिल गया कि संपत्ति मिल गई जो भगवान आपको दिए और उसकी रक्षा करते हैं, ऐसी बात, आपके जो ब्रह्माकार वृत्ति बन रही है वो अप्राप्तस्य प्राप्ति, जो पहले उस प्रकार की वृत्ति बनी नहीं थी अभी उस प्रकार की वृत्ति आपकी बन रही है, उसकी रक्षा भी परमेश्वर ही करते हैं, प्राप्ति भी कराए। कैसे? क्योंकि आप नित्य लगे हुए रहते हैं, अभेद रूप से परमात्मा को अनुभव करना चाहते हैं। तो ऐसे साधक को उस प्रकार की वृत्ति बनाने में जो सामर्थ्य देते हैं, अब व्यक्ति के पास क्या सामर्थ्य है, अभी आप सोच लीजिए जो वेट लिफ्टर होते हैं ना, ओलंपिक वगैरह में जाएंगे 200-250 किलो से उठाते हैं, अब बुढ़ापे में पानी पीने के लिए गिलास नहीं उठा सकता, वो हाथ जो है थर थर कांपने लगता है, वो क्षमता कहां से आई है आपके पास, वो तो परमेश्वर ही देते हैं, सारी क्षमता देने वाले, सब बल प्रदान करने वाले परमात्मा के सिवा दूसरा कोई नहीं है। अब मन को भी ब्रह्माकार वृत्ति से पोषित करने वाली कि सदा ये वृत्ति बनी रहे, बिना परमेश्वर की कृपा से थोड़ी होगी, भगवत कृपा उसके लिए चाहिए। ईश्वरात्नुग्रहात एव पुंसाम अद्वैत वासना महाभय परित्राणाम दित्राणाम उपजायते, बिना ईश्वर के अनुग्रह से इस प्रकार की वासना बनेगी नहीं। तो इसलिए वासना द्विविधम प्रोक्तम शुद्धम चाशुद्धम एवच, अशुद्धम काम संकल्पम शुद्धम काम विवर्जितम। वासना भी दो प्रकार की है, एक शुद्धा वासना है, एक अशुद्धा वासना है, जिसमें कोई कामना नहीं है, ऐसी जो शुद्धा वासना है ईश्वरानुग्रहादेव, बिना ईश्वर के अनुग्रह से इस प्रकार की वासना नहीं बनती है। तो इसलिए यहां भगवान कहते हैं उसके योग खेम को मैं ही बहन करता हूं। टीका में देखिए अनन्या इति, ये जना अनन्या शब्द का अर्थ करते हैं अहम ब्रह्मास्मि इति ज्ञानेन मद अभिन्नः संतः। अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे अभिन्न जो रहता है, चिंतन करता है, कि मन से ही चिंतन होगा कि मैं अभिन्न हूं, ऐसा जो रहता है तथैव माम चिंतयतः, ऐसे मेरा चिंतन करता है, पर्युपासते, कब कब चिंतन करता है वो, थोड़ा सवेरे उठते समय कराग्रे बसाते लक्ष्मी करम मंदिर सरस्वती, सवेरे और रात्रि में जब सोने जाएगा थोड़ा सा चिंतन कर देता है, ऐसे नहीं बता रहे हैं भगवान, कहते हैं पर्युपासते परितः सर्वेषु अपि कालेषु उपासते, हर समय मेरी उपासना करता है, हम ब्रह्मास्मि का चिंतन नित्य निरंतर जो करता है। मद रूपा एवं वर्तन्ते, मेरे स्वरूप से ही रहता है वो, मेरे स्वरूप होकर के रहता है, मद रूपा परमात्मा रूप होकर के ही वो रहता है, माने अभिन्न रूप। तेषाम नित्य अभियुक्तानाम, जो सदा नित्य शब्द करता सदा, जो मेरे से ऐसे रूप से जुड़े हुए हैं सदा मच्चित्तानाम तेषाम अहम तदात्मत्वेन, उस साधक के आत्म रूप से अनुसंध्यमानो अहम, मैं साधक का विषय बन जाता हूं, अनुसंधान का विषय मैं ही बन जाता हूं कि परमेश्वर को अभिन्न रूप से वो अनुभव करना चाहते हैं। ऐसा जो साधक है योगक्षेमम अलब्ध प्रापणम लब्ध परिरक्षण रूपो योगक्षेमो बहामी संपादयामी इत्यर्थः, दोनों चीजों को योग को भी और क्षेम को भी मैं ही रक्षा करता हूं। तो इसलिए भगवान स्वयं लील ली इसमें। छोटे महाराज जी थे, एक श्लोक प्राय बोलते थे, का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वंभरो गीयते नोचे दर्भक जीवनाय जननी स्तन्यम कथम निस्सरे इत्यालोच्य मुहुर्मुहुर् यदुपते लक्ष्मीपते केवलम् तत्पादाम्बुजचिन्तनेन सततम् कालो मया नीयते। का चिंता मम जीवने यदि विश्वंभरो गीयते, परमात्मा है वो चलाने वाला वही है। कैसे? अरे इसी से तो पता लगता है कि बच्चा पैदा होने से पहले मां के स्तन में जो है दूध आ गया। नोचित अर्भक का जीव, अर्भक कहते हैं बच्चे को, अर्भक का जीव नाय जननी स्तन्यम कथम निस्सरे, उस बच्चे को क्या पता है कि दूध कितने गर्मी होनी चाहिए, कितने ठंडक होना चाहिए, मीठा कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए। परमात्मा ही स्वयं मां के स्तन से दूध का निस्सरण कराते हैं, बच्चे के अनुरूप बनाते हैं। तो ऐसे परमेश्वर है, ऐसा जिसको बोध हो गया, इत्यालोच्य मुहुर मुहुर बार बार हर समय, यदुपते लक्ष्मीपते केवलम, भगवान लक्ष्मीपति को यदुपति को याद करना चाहिए। त्वद पादाम्बुज चिंतनेन सततम, उनके चरणों का चिंतन सतत नित्य करते हुए, कालो मया नियति, मैं तो अपने समय को ऐसे व्यतीत करता हूं। तो इस प्रकार जो साधक, जिसको पता लग गया कि परमेश्वर ही सबके रक्षण करते हैं, योगक्षेम बहन करते हैं, तो सामान्य मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा, कभी कभी ऐसे हो जाता है। और कभी घटना भी ऐसे घट जाती है, जो व्यक्ति ऐसा सोचता था ना वो चला गया, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उनका क्या हो, उससे ज्यादा अच्छे होते हैं फिर। जो सोचता था कि मेरे बिना इनका क्या होगा, उस समय तो घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, उनके जाने के बाद और अच्छी स्थिति आ गई। तो करने कराने वाले तो परमेश्वर है, ऐसा दृढ़ बोध साधक को होता है, सब कुछ परमेश्वर के ऊपर छोड़ देता है और परमेश्वर के साथ मैं अभिन्न हूं, इस प्रकार अहम ब्रह्मास्मि के चिंतन वो करता है। इसके आगे समय हो गया, इसके आगे कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।